पिछले अंक में हमने जीवन की क्षणभंगुरता पर बात की थी। एक छोटी सी चर्चा कविता के आभूषण अलंकारों पर, और बताया था कि बच्चन बाबू के परिवारजन कुछ बातें उनसे छिपा क्यों जाते थे। आज के अंक में बात मनुष्य के अंतर्निहित असंतोष की और हमारे कविराज को एक समय मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ी। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, 50 फौजी सिपाहियों की एक प्लाटून कॉलेज के कंपाउंड से निकलकर स्टेशन की ओर जा रही है। आवाजें आ रही हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, टरक टरक टरक, लेफ्ट राइट लेफ्ट, टरक टरक टरक। सिपाही भारी मोटे काले एम्यूनिशन बूट पहने हैं, लोहे की नाल जड़ा एक एक बूट वजन में 2.5 सेट से कम तो क्या होगा, तिस पर पाओ में मोटे ऊनी मोजे। और ये है इलाहाबाद में मई की दोपहर, आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर लू चल रही है। गर्दो गुबारी आँच में चिंगारी, एक अजब सी लड़ाई है तन मन में जारी। बदन पर खाकी कमीजें और खाकी शॉर्ट्स हैं, उस पर इक्विपमेंट जिसके एक ओर बेयोनेट लटक रहा है, दूसरी ओर पानी की बोतल, और पीठ पर फौजी सामान से भरा बैग। सिर पर मोटा हैट है और हैट हवा में उड़ ना जाए इसलिए उसका तस्मा ठोड़ी पर कस लिया गया है। बाएं हाथों में राइफलें और दाहिना हाथ सबका एक साथ आगे पीछे हिल रहा है जैसे वे कदम ताल में आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट, सिर उठाए सीना ताने सामने देखते। बदन पर पसीने के धारे बह रहे हैं पर किसे परवाह। तो ये हुआ एक दृश्य। अब इस दृश्य में क्या आप विश्वास करेंगे कि इन्हीं फौजी सिपाहियों के बीच एक भावुक हृदय कवि भी है, जिसने कभी मधुशाला का महल उठाया था, मधुबाला को इशारों पर नचाया था, मधु कलश में कविता की मदिरा भरी थी, निशा निमंत्रण में आंसू की बूंदें गिराई थी, एकांत संगीत में मन का अकेलापन गाया था और आकुल अंतर में अंतर की आकुलता की गूंज सुनाई थी। उस कवि लेखक गायक शायर को क्या आप पहचान सकते हैं इन खाकी वर्दी वालों के बीच? लेकिन ये कवि इन फौजियों के बीच कर क्या रहा है? शादी के 16 महीने हो गए, जीवन भी सुव्यवस्थित है, ख्याल रखने वाली एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी पत्नी, 6 महीने का बच्चा है, 36 वर्ष की आयु और आर्थिक स्थिति भी अब तो ठीक है। तो फिर सर पे क्या खब्द सवार हुआ कि भरी गर्मी में फौजी ट्रेनिंग की कठिनाई झेलने निकल पड़ा? क्या किसी कुत्ते ने काटा था? नहीं, ये तो स्वभाव से ही विवश था। ऐसा लगता है कि इसे एक ही जीवन में बहुत कुछ कर जाना था। क्या पता ये मौके फिर आए ना आए, और इस बात का उत्तर शायद मधुशाला की इन पंक्तियों में मिल जाए। देखिए कवि क्या कहते हैं। यम आएगा साकी बनकर, यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा, सुरा विसुध यह मतवाला। कवि कहते हैं कि यम साकी के रूप में आएगा और जो वो हाला लेकर आएगा वो होगी काली हाला, और जो मतवाला उस हाला को पी लेगा वो फिर कहाँ होश में आ पाएगा। यम आएगा साकी बनकर, साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा, सुरा विसुद यह मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। ये जो बेहोशी है ये अंतिम है, क्योंकि यदि यम काली हाला लेकर आएगा तो जो कुछ भी होगा अंतिम होगा। अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जो करना है अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि एक बार वो काली हाला पी ली, जीने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला, फिर न मिलेगी मधुशाला। इन पंक्तियों को मन्ना डे की आवाज में सुनिए। वो जो एल्बम है, कितनी सुंदरता से गाया है, जैसे कोई शांत शांत शीतल सी बहती हुई नदी हो। कवि कहते हैं कि यम किसी भी रूप में आ सकता है, हो सकता है साकी के रूप में आए, मृत्यु की काली हाला लिए। तो कवि कहते हैं कि आखिरी सांस से पहले, वो जो आखिरी काली हाला है, उससे पहले इस जीवन का जो करना है अच्छी तरह से कर लो। ये जो जीवन की हाला है, इसे संभाल कर अच्छी तरह से पी लो, इसका आनंद उठा लो। इसके आगे मधुशाला मिले ना मिले, लाइक एन अल्टीमेट ट्रांस विद द अल्टीमेट सिप। भावार्थ ये भी है कि जो है पहले उसकी कदर करो, जो नहीं है उसका सोच के काहे परेशान होना। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, इसलिए ऐसा सोचना ही क्यों कि कुछ हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है पहले उसका तो उपयोग कर लें, उसका तो उपभोग कर लें, उसके बाद बाद की सोचेंगे। और दूसरी बात, कुछ भी यदि करना है तो जोश और जुनून से करना है। ऐसे करना है लाइक देर इज नो टुमोरो, कल हो ना हो। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहा। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहा। तो अब वापस फौजी ट्रेनिंग की बात पर आते हैं। तो हुआ ये था कि सारा लड़कपन संघर्षों में बिताने के बाद कविराज आराम करने के काबिल नहीं रह गए थे, तो जी चाहता था कि कुछ हो जिससे उलझें, उलझें और विजय पाएं। कुछ कशमकश हो, कुछ रस्साकशी हो। उन्हें बड़ी उहापोह होने लगी थी कि जब तक जीवन में दुख थे, अनिश्चितता थी, कविताएं अपने प्रवाह में बह रही थी एक प्रेरणा सी बनके। अब जब जीवन व्यवस्थित हो गया, आर्थिक समस्याएं नहीं रही, कविता लिखी ही नहीं जा रही, तो एक तरह का आजकल जिसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, शायद वो हो गया। तो बच्चन जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं, मैंने केवल लिखने के लिए लिखा ही कब है, मैं तो हमेशा जीवन की कठिन या सरल किंतु सर्वदा ठोस समस्याओं से जूझता हुआ लिखता रहा हूं। मेरे सिर पर बोझ आए और उसके भार से या जोर पड़ने से मेरा कंठ खुले तो खुले, वरना अच्छा है कि बंद ही रहे। सिर पर बोझ उठाए गाता रहा हूं, भार सिर पर कंठ में स्वर, भार सिर पर कंठ में स्वर। और इस बारे में बच्चन जी के आदर्श कवि विलियम बटलर येट्स क्या कहते हैं, द फैसिनेशन ऑफ व्हाट इज डिफिकल्ट, यानी जो मुश्किल है, कठिन है, उसका आकर्षण। यदि उसका हिंदी अनुवाद पढ़ें तो कुछ इस तरह से है, जो मुश्किल है उसके आकर्षण ने मेरी नस नाड़ी के सारे रस को सोख लिया है। कुछ कुरेदता है मेरे मन के, मेरी कल्पना के घोड़ों को, उबालता है उनके रक्त को कि वो कोड़े खाकर कांपें, बादल से बादल के ऊपर कूद लगाएं, स्वेद बहाएं। मैं कसम खाता हूं सवेरा होने से पहले, देखें कैसे टिकते हैं ये घोड़े तबेले में, देखूं कैसे टिकते हैं ये घोड़े तबेले में। यानी मेरे मन के, कल्पना के घोड़ों को तबेले में नहीं टिके रहना है, उन्हें तो दौड़ लगानी है, भाग जाना है, बादल से बादल के ऊपर कूदना है, पसीना बहाना है। तो विलियम बटलर येट्स साहब ने तो जीवन में संघर्ष लाने के लिए एक नाटक घर खोल लिया था, और हमारे कविराज पहुंच गए फौज में। तो बच्चन जी कहते हैं कि हर पुरुष के अंतर में एक नारी होती है और हर नारी में एक पुरुष होता है। किसी में वो कम मुखर होता है, किसी में ज्यादा। और कविराज अपने बारे में कहते हैं कि उनके अंदर की जो नारी थी वो अधिक सशक्त और सजग थी। तो हो सकता है ये कठिनाइयों का जो आमंत्रण था, जो आकर्षण था, वो शायद एक प्रयास था उसको नकारने का। वो शायद चाहते थे कि उनके अंतर का जो पुरुष है वो अधिक सशक्त हो जाए और जो नारी है वो नीचे बैठ जाए। उन्होंने आकुल अंतर कविता में लिखा भी है, ओ अवचेतन तू अपने मन की नारी को, तू अपने मन की नारी को अस्वाभाविक बीमारी को उठ दूर हटा, तू अपने मन का पुरुष जगा, तू अपने मन का पुरुष जगा। तो यहां डिस्क्लेमर दे दें कि ये जो बीमारी शब्द है वो नारी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। इसके माने ये हैं कि ये जो अस्वाभाविकता है, यानी अननेचुरल सी जो एक बात है, ये एक तरह से बिगड़ा हुआ संतुलन है, यानी इम्बैलेंस, और उसे ठीक करने का मानो एक प्रयास था फौज की ट्रेनिंग की कठिनाई झेलना। और वैसे बच्चन बाबू कहते हैं कि एक तरह से अच्छा था कि उनके अंतर की नारी ज्यादा सशक्त है और जो तेजी जी हैं उनके अंतर का पुरुष अधिक सशक्त है, तो उस तरह से भी एक बैलेंस बनता था। खैर, वापस फौजी बात पर आते हैं। तो बच्चन जी ने आधुनिक हथियार चलाने की शिक्षा ली और कहा, मैं कलम और बंदूक दोनों चलाता हूं, उसमें मेरे पुराने सपनों की प्रेरणा भी हो सकती है, जो शायद परबाबा घुड़सवार नायब सूबेदार साहब से आई हो, या अपराजय रहने के प्रति मेरी आस्था है, चाहे फिर चुनौती किसी शत्रु से आए या किसी समस्या या किसी परिस्थिति से ही। और यही भाव इन पंक्तियों में भी उतर आते हैं। और यहीं के मिट्टी पानी से विरचित है मेरी काया, अरे पूर्वजों किस तप बल से था तुमने वह पुण्य कमाया। और यहीं के मिट्टी पानी से विरचित है मेरी काया, अरे पूर्वजों किस तप बल से था तुमने वह पुण्य कमाया। ऊंचे से ऊंचा भी अंतिम बार यहां रजकण बन आता, भारत की धरती के ऊपर चल आई यह रीति सगर से, भारत की धरती के ऊपर चल आई यह रीति सगर से। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो दबी छिपी वंश परंपरा हो कि उनके जो पर बाबा थे घुड़सवार नायब सूबेदार, वही शायद उनके रक्त में भी रहा हो। तो ऐसे ही एक फौजी कैंप में रहते हुए बच्चन जी ने फिर कभी शराब ना पीने की भी कसम उठाई थी, वो कहानी फिर कभी। फिलहाल मधुशाला के सफर पर आगे बढ़ें बिना लेफ्ट राइट लेफ्ट किए। तो इसी असंतोष की बात आगे करें तो ऐसा कहा जाता है कि असंतोष जो है वो बड़ा अल्पस्थायी होता है, बहुत कम समय के लिए रुकता है, किंतु संतोष भी वैसा ही है, वो कहाँ ठहरता है। और साथ में ये भी बात सच है कि जो नई राहें होती हैं, जो नए रास्ते होते हैं, वो अधिकतर केवल असंतोष से ही खुलते हैं। यदि संतोष हो, शांति हो, सब कुछ ठीक ठाक सोचा समझा चल रहा हो, तो किसी को नए रास्ते खोजने की आवश्यकता ही कहाँ होगी। सोचिए, संतोष में रहता तो कोलंबस अमेरिका को कैसे खोज पाता, वैसे निकला तो था भारत खोजने। और एक मजेदार कहानी है कि कोलंबस की यात्राएं जो थी वो उसके मरने के बाद भी नहीं रुकी थी। मृत्यु के बाद भी कोलंबस की जो अस्थियां थी वो एक स्थान पर नहीं टिकी, बल्कि कई सालों तक, दशकों तक यहां से वहां यात्रा करती रही। वो कैसे हुआ ये एक अलग ही कहानी है। बहरहाल अब इसी संतोष पर और जीवन के दुख दर्द, उन्हें सह पाने की सामर्थ्य और योग्यता के भावों पर आकुल अंतर संग्रह में एक कविता है, वो इस तरह से है। कौन देवता नहीं जानता, कुछ फल होगा नहीं मानता, बलि के योग्य बनूं इसकी मैं करता हूं तैयारी, सुनकर अचरज होगा भारी। जाना वाना नहीं कभी है, ज्ञात मुझे यह बात सभी है, पर मुझको संतोष तभी है, दे न सको तुम किंतु, बनू में पाने का अधिकारी, सुनकर अचरज होगा भारी। यानी मुझे संतोष तभी होगा जब मैं कुछ पाने का अधिकारी हो जाऊं, पर मुझको संतोष तभी है, दे न सको तुम किंतु बनू, मैं पाने का अधिकारी, सुनकर अचरज होगा भारी। तो इसी बात पर आज विराम। अगले अंक में सुनते हैं एक किस्सा बच्चन परिवार के साथ हुई एक सड़क दुर्घटना का, और वहां उन्हें उनकी ही मधुशाला ने कैसे बचाया। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर, उसकी कविताओं के भावार्थों पर और उससे जुड़े कुछ जीवन अनुभव, कुछ किस्से कहानियों पर। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई या आईट्यून्स पर, और मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक आप अपने जीवन में थोड़ा सा असंतोष अवश्य बनाए रखिए, ताकि अच्छी चाय का एक प्याला और पिया जा सके। स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें।